अगला श्लोक देखिए, तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। तथा मैंने उसके बाद तो फिर पांडवों की तरफ से भी बाजे बजने लगे, शंख बजने लगे। श्वेतैर हैर युक्ते, श्वेत घोड़े जिसमें जुड़े हुए थे इस प्रकार के रथ के ऊपर, चंदन माने रथ, और वो भी कैसा महति चंदन, बहुत बड़ा रथ स्थित तो उसके ऊपर बैठे हुए माधवा भगवान कृष्ण ने, और पांडव के माने यहाँ अर्जुन है, बड़े रथ पर बैठा हुआ है। मैंने उधर की तरफ कौरवों की तरफ कोई ऐसा बड़ा रथ नहीं है। अर्जुन का जो रथ था वो अग्निदेव ने इनको दिया था। पीछे की घटनाएं और जो है उनसे संबद्ध ये घटनाएं हैं। एक बार अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को रथ दिया। ये रथ जो है वही रथ है, ये इसके ऊपर बैठे हुए अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए आए, और ये रथ ही अजेय रथ है। माने इसके ऊपर बैठ करके अर्जुन युद्ध करेगा तो इसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अग्निदेव की तरफ से इस बात, इसलिए रथ भी दिव्य है, और इन्होंने जो शंख बजाए दोनों ने, इनके शंख भी ये दोनों दिव्य हैं। अब इनकी दिव्यता तो ऐसे समझ लो, जब भगवान कृष्ण ही दिव्य हैं तो उनका शंख तो दिव्य हो गई होगा। एक सिद्धांत ये है कि भगवान जैसे परब्रह्म परमात्मा अवतार ले, सगुण साकार रूप उसने धारण किया, तो उसका विग्रह शरीर जो है वो हो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तो है ही है, वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उसी ने शरीर धारण कर लिया। तो माने वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप जो तत्व है उसी ने घनीभूत होकर के अवतार लेकर के रूप धारण कर लिया। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे वाल्मीकि जी भगवान राम का वर्णन करते हुए उनसे कहते हैं कि चिदानंद में देह तुम्हारी, तुम्हारी देह तो चित और आनंद स्वरूप है। ऐसे ही भगवान कृष्ण का भी विग्रह शरीर चित और आनंद में है, लेकिन उनका शरीर ही नहीं, जो वस्त्र वे धारण किए हुए हैं वे सब चिदानंदमय वो भी हैं। उनके पास अगर मुरली है तो वो भी चिदानंदमय है, अगर वो मुकुट धारण किए हुए हैं तो वो भी चिदानंदमय है, उनके पास अगर शंख है तो वो भी चिदानंदमय है। माने ये सब दिव्य है, ये भावना रखनी चाहिए। जो सगुणोपासक हैं उनको सगुण रूप परमात्मा का भी ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। जब उनका ध्यान चिंतन करें तो इसी भाव से करें कि वो भी सत्स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और दिव्य हैं, अभौतिक हैं। उनका शरीर, उनका विग्रह, उनका भाव स्वभाव मन बुद्धि कोई पांच भौतिक नहीं है। न उनका शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से बना, न उनके मन बुद्धि भी अपंचीकृत पंच महाभूतों से बने। वे केवल उसी तत्व ने, जो परम तत्व है, उसी ने व्यवहार कार्य के लिए, अन्य लोगों के बीच में लीला करने के लिए एक विशेष प्रकार का रूप धारण किया हुआ है, लेकिन है वही तत्व, मूल तत्व वही परमात्मा ही है। और उनके जितने भी इस प्रकार से आभूषण इत्यादि हैं, जो कुछ वो धारण करते हैं, उपयोग करते हैं, वे सब भी उसी प्रकार से हैं। इसलिए भरत जी जब भगवान राम की पादुकाएं ले आए और उन्होंने अयोध्या में सिंहासन के ऊपर स्थापित कर दी, तो फिर भरत जी उन्हीं से पादुकाओं से आदेश लेकर के राज्यकार करते रहे। पादुकाएं कैसे राज्यकार का आदेश देंगी? अगर वो पादुकाएं भौतिक होती, लकड़ी की बनी होती, जड़ होती, तो उनसे कोई आदेश न मिलता। लेकिन भगवान राम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप, तो उनकी पादुकाएं भी सच्चिदानंद स्वरूप चेतन, इसलिए उनसे आदेश मांगे तो पादुकाओं से उनको आदेश मिलता रहा। इस प्रकार से भावना रख करके देखो। ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया वो भी दिव्य शंख बजाया। अब दिव्य शंख का प्रभाव क्या होगा, भौतिक शंख और दिव्य शंख। एक भाव और भी है कि भाई दुर्योधन का पक्ष अधर्म का पक्ष तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ निरा भौतिकवादी पक्ष है। अर्जुन का पक्ष जो है वो धर्म का पक्ष तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अभौतिक या पारमार्थिक पक्ष भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ हैं। अर्जुन धर्मपरायण है और भगवान कृष्ण परमार्थ के प्रतीक हैं। इसलिए इधर का पक्ष जो पांडवों का जो पक्ष है, इसमें और उसमें किस प्रकार की तुलना है, वो संजय के शब्दों के द्वारा आप ध्यान देखो तो स्पष्ट होती जाएगी। तो इस प्रकार से ये संख दिव्य संख इस तरह से बजाए गए। इसको सुनकर के का क्या प्रभाव हुआ वो तो बाद में देखेंगे। अभी आप ये देखो कि ये संख जो है, ये इनके संखों के सबके अपने अपने नाम भी हैं, और ये बड़े प्रसिद्ध संख थे उस समय, जो संख के समय बजाए गए।